नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दे रही है। बजट के बाद के वेबिनार कृषि और ग्रामीण परिवर्तन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार एग्रीटेक के माध्यम से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर रही है। उन्होंने किसान पहचान पत्र और डिजिटल भूमि सर्वेक्षण को परिवर्तनकारी कदम बताया। एआई आधारित प्लेटफॉर्म और डिजिटल सर्वेक्षणों की भूमिका पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है जब इसे संस्थानों और उद्यमियों द्वारा एकीकृत किया जाता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी को पारंपरिक प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के तरीकों पर सुझाव आमंत्रित किए।
एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनिश्चितता के इस युग में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता ही है। श्री सिंह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद सागर संकल्प भारत की समुद्री शान की वापसी का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हुआ है और साथ ही समुद्री गतिविधियों में निरंतर वृद्धि भी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश इस महीने के अंत तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ओडिशा के कटक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि सुरक्षा बल तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले लाल गलियारे के माओवादियों के सपनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी बंदरगाहों की सुरक्षा CISF को सौंपने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने माल्टा के विदेश मंत्री इयान बॉर्ग और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रितिश रामफुल के साथ बातचीत की। उन्होंने भूटान के विदेश मंत्री ल्योम्पो डी एन धोंगेल और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेराथ से भी मुलाकात की। सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम कल घोषित कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सुबे दूसरा और एकांश ढल ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसराइल और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच संघर्ष का आज 8वां दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार करते हुए उसके बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के आत्मसमर्पण करने पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिका ईरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण की दिशा में प्रगति कर रहा है और 4 से 6 सप्ताह के भीतर लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ईरान का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने कहा कि कुछ देशों ने अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC को निर्देश दिया है कि वो 4 सप्ताह के लिए समाचार चैनलों की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स TRP की रिपोर्टिंग को तत्काल निलंबित कर दे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कुछ टीवी समाचार चैनल इसराइल ईरान संघर्ष के बीच अनावश्यक सनसनीखेज और अटकलबाजी वाली सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फेंग को 21-13, 21-16 से हराकर पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।